अब मूसा की जिंदगी का अगला दौर वो क्या है, फिरौन के दरबार में पहुंच रहे हैं। अभी सारी प्रेपरेशंस थी, तो यहाँ से अमल का नुक्ता लिख रहे, कोई काम हैजर्डली ना शुरू करें, अलाजिला तुम्हें ना शैतान, जल्दबाजी के किए हुए काम खराब होते हैं, पुरसकून हो के तरीके से अच्छे अंदाज से काम शुरू करें। चलिए, फलम्मा जाहु मूसा भी आया थी ना बेशी ना, बस जब इनके पास मूसा अलैहि सलाम हमारे दिए हुए खुले मौजज़े लेकर पहुंचे, वो कहने लगे ये तो सिर्फ घड़ा घड़ाया जादू है, हमने अपने अगले बाप दादाओं के ज़माने में कभी ये ना सुना। हजरत मूसा अलैहि सलाम कहने लगे मेरा रब्बे ताला इसे खूब जानता है जो इसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखरत का अच्छा इंजाम होता है, यकीनन बेइंसाफों का भला ना होगा। फिरौन कहने लगा है दरबारियों मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता, सुन ए हामान तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूँ, इसे तो मैं झूठों में से ही गुमान करता हूँ। उधर देखिए अजीज़ मिस्र भी वजीर खजाना था उस दौर के मिस्र के बादशाह का, और इधर हामान फिरौन का वजीरे खजाना था। इसमें मुख्तलिफ किस्म के किरदार आपको दिख रहे हैं, फिरौन के साथ हामान और कारून, एंड पे इनका तकाबुल भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बहरहाल यहाँ वो मजाक उड़ा रहा है कि किधर है मूसा का रब, दिखाओ जरा किधर है, मैं झांक के तो हूँ आसमान से। ये ऐसा कौन करता है जिसका दिल अल्लाह के ऊपर नहीं जमा होता। रशिया का एक एथियस्ट सदर था या वजीर था जहाज में बैठा हुआ, उसके साथ सारे अखबारी नुमाइंदे भी, उनमें एक मुसलमान भी था, तो वो जो वजीर था ना उसको मजाक सूझा, कहने लगा तुम तो मुसलमान कहते हो कि अल्लाह ऊपर है तो आज हम काफी ऊपर आए, मैं दिखाओ किधर है। अब वो क्या कहता, आगे से डर जाता घबराता, बड़े एतमाद से वो मुसलमान जर्नलिस्ट कहता है वजीर साहब जरा सा जहाज का दरवाजा खोले आपको रब सामने दिखेगा, लोगों को दलील से कायल कर दीजिए। बस तक बरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्दि बिगैरिल हक, इसने और इसके लश्करों ने ना हक तरीके पर मुल्क में तकबर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ही ना जाएंगे, बिलाखिर हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया, यानी दरिया में डबो दिया। अब देख ले कि इन गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ, क्या पता चला कि ऐसे लोगों का अंजाम फिर बुरा ही होता है। वजअलनाहुम आइम्मा, और हमने इन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएं और रोज़े क़यामत मुतलक मदद ना किए जाएं, और हमने इस दुनिया में भी इनके पीछे अपनी लानत लगा दी और क़यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे, और इन अगले ज़माने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब इनायत फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। और तूर के मग़रिब की जानिब जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म अहकाम की वही पहुँचाई थी, ना तो तू मौजूद था और ना तू देखने वालों में से था, लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पर लंबी मुद्दतें गुजर गईं, और ना तू मदियन के रहने वालों में से था कि इनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले हैं। वमा कुंत बिजानिबे तूर, और ना तो तूर की तरफ था जबकि हमने आवाज़ दी, बल्कि ये तेरे परवरदिगार की तरफ से एक रहमत है इसलिए कि तू इन लोगों को होशियार कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं पहुंचा, क्या जबकि वो नसीहत हासिल कर लें। अगर ये बात ना होती कि इनके अपने हाथों आगे भेजे हुए अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती तो ये कह उठते कि हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि ये वो क्यों नहीं दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया था इसके साथ लोगों ने कुफर नहीं किया था, साफ कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं और हम तो इन सब के मुनकिर हैं। कुल फातु भी किताब है मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं इसी की पैरवी करूंगा। फिर अगर ये तेरी बात ना माने तो यकीन कर ले कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं। आज भी कई लोगों को ये चैलेंज है कि ये कुरान नहीं समझ आ रहा ना, ये हदीस तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो लाओ फिर अपनी मर्जी का कोई इज्म। दुनिया में आज लोगों ने क्या क्या तरीके अपना लिए, सब फेल है, सब बेकार है, एक ही इज्म, एक ही सही है, वो इस्लामिज्म है और वो अल्लाह की किताब और उसके रसूल की बात है, बाकी चीज़ें सिर्फ ख्वाहिशात है। और इससे बढ़कर भटका हुआ कौन है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बगैर अल्लाह की रहनुमाई के, बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तदब्बुर I 36 से अमल के पहले नुक्ते देखते हैं। हक के मामले में मैं मुतकब्बिर बनूं, इससे अल्लाह की पनाह मांगे। शोर से दुआ करें, अल्लाह मुझे मुतकब्बिरीन में ना करना, अल्लाह मेरे अंदर से मेरी बड़ाई का एहसास ख़त्म कर दे। अल्लाह जब मेरे सामने हक बात आए तो मुझे उसको मानने की तौफीक अता फरमा। खैर में लोगों के पेशवा बने, लीड करें, लोग आपके पीछे चले और खैर की तरफ आए ताकि उनका भी अजर आपको मिले। अल्लाह ताला की शरीयत को ख्वाहिश नफ्स पर मुकद्दम रखें, क्योंकि शरीयत बंदे को जन्नत तक पहुँचाएगी और शहवत बंदे को जहन्नुम के दरवाजे पे खड़ा कर देगी। रहनुमाई, जुल्म करने से बचे, क्योंकि जालिमों का अंजाम तबाही और हलाकत है। मुसलमान सही शरई दलील को काफ़ी समझकर मुतमईन हो जाता है, उसको किसी और की दलील की कोई ज़रूरत नहीं होती। किताब अल्लाह से ज़्यादा हिदायत वाली कोई किताब है ही नहीं। जो कोई लाकर पेश करे गौर व फिक्र, तकलीदी रस्म व रिवाज को दलील बनाना बिदअत है। लोगों को बुराई और कुफर की दावत देकर जहन्नम का दाई नहीं बनना। कुफर और मासी का इर्तकाब मुसीबतों के नजूल का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानकर दूसरों की पैरवी करना इत्तबाए ख्वाहिशात की अलामत है, इससे अल्लाह सबको महफूज रखे। आगे आयत 51 से अब मूसा का किस्सा एक दूसरे रुख में ढलता है। वलकद वसलना लहुमुल कौल लअल्लहुम यतज़क्करून, और हम बराबर पै दर पे लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह हमें इस कुरान से नसीहत दे दे। एक दुआ करें कि अल्लाह हमें इस किताब से ही हिदायत दे दे, इससे पहले कि हम पे कोई मुसीबत पड़े और उससे हमें हिदायत मिले। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर ईमान रखते हैं। आयत 52 पे सुबह बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल कुरआन व इज़ा तुतला अलैहिम क़ालू आमन्ना, और जबकि इसकी आयतें इनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। अल्लाह ताला पढ़ने और सुनने के दौरान हमें भी यही सोचने की और यही कहने की तौफीक दे कि हम इसको अमल के इरादे से सुन रहे हैं। ये अपने किए हुए सब्र के बदले दोहरा अजर दिए जाएंगे, ये नेकी से बदी को टाल देते हैं, और हमने जो इन्हें दे रखा है इसमें से देते रहते हैं, और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो इसे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, क्योंकि ला नबतहिल जाहिलीन, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। अल्लाह एक एक खूबी जो इधर मेंशन हुई है हमारे अंदर डाल दे। इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन्नल्लाह, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत वालों से वही खूब आगाह है। वकालू, कहने लगे अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे, क्या हमने इन्हें अमन अमान और हुरमत वाले हरम में जगह नहीं दी जहाँ तमाम चीज़ों के पल खिंचे चले आते हैं रिस्क के तौर पर हमारी तरफ से, लेकिन इनमें से अक्सर कुछ भी नहीं जानते। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी, ये है इनकी रिहाइश की जगह जो इनके बाद बहुत ही कम आबाद की गई, और हम ही हैं आखिर सब कुछ के वारिस। इमेजिन कीजिए अपनी चीज़ों को और इस आयत को समझिए। आज जितना कमा लेंगे, जितना कंज्यूम कर लेंगे, एंड पे अल्लाह वारिस। ये आयत है जिससे आप आरे के थीम को अखज करें। बदीरत मई शता, आज आप कहते हैं ना बहुत दौलत है माल है, नहीं पहले था सोने चांदी के बर्तनों में तो वो खाना खाते थे, हमारे लिए तो 1 ग्राम लेना भी मुश्किल है। आज कौन खाता पीता सोने चांदी के बर्तनों में, आज क्रिस्टल में कौन खाता है। ये अपने वक्त की वो कौमें थी जिनको अल्लाह ने अरूज दिया था, लेकिन रब की बात ना मानी, अल्लाह ने सब उनसे ले लिया, क्योंकि वकुन्ना नहनुल वारिसीन वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा, तेरा रब किसी एक बस्ती को भी इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इसकी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर न भेज दे जो इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, और हम बस्तियों को इसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले जुल्म व सितम पर कमर कस लें। वमा उती तुम इन शईन फमताउल हयात दुनिया, और तुम्हें जो कुछ दिया गया है सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सामान और इसी की रौनक है। हाँ अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देर पा है, क्या तुम नहीं समझते। ये है व्हील ऑफ लाइफ। वक्फैया, जो दिया है चंद दिन का, अल्लाह के पास बाकी है, ड्यूरेबल है। अल्लाह के पास जो चीज़ें ना वो बहुत बाकी रहती है, हमारे पास कच्ची चीज़ें टूट जाती हैं, हमारी कुर्सियाँ टूट जाती हैं, हमारे मेज़ ख़राब हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इस दुनिया में बड़ी बेबरकती है, अपना जो अच्छा लगे ना वो एक्स्ट्रा हो तो अल्लाह के पास जमा करा दिया करें, क्योंकि वहाँ चीज़ सिक्योर हो जाती है। अफ मन बात ना हुआ धन हसना, क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया, जिसे वो कतन पाने वाला है, मिसल इस शख्स के हो सकता है जिसको हमने दुनिया की ज़िंदगी कुछ यूं ही सी दे दी, यानी थोड़ा बहुत दे के डर खा दिया उसको, फिर बिलाखिर वो क्यामत के रोज़ पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा, और जिस दिन अल्लाह तआला ने पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं वो, जिन पर बात आ चुकी वो जवाब देंगे कि हमारे परवरदिगार यही वो हैं जिन्हें हमने बहका रखा था, हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके थे, हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, यानी हैंड्स अप करते हैं, सॉरी वी कैन डू दिस, ये हमारी इबादत नहीं करते थे, यानी सारी जिंदगी जिन पे तकिया लगाए रखा आज वही इनकारी हैं। कहा जाएगा अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें वो जवाब तक ना देंगे, कैसे दें, बेजान बुत कैसे जवाब देते हैं, ये कब्रों में गए हुए कैसे बोलेंगे, और सब अजाब देख लेंगे, काश ये लोग हिदायत पा लेते, दुआ कीजिए अल्लाह कब्र प्रस्ती के शिर्क में मुब्तला लोगों को हिदायत दे दे। इस दिन इन्हें बुलाकर पूछेगा तुमने नबियों को क्या जवाब दिया, उस दिन इनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे। हाँ जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले और नेक काम करे, यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा, और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, और इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ही के लिए पाकी है, वो बुलंदतर है हर उस चीज़ से जो के लोग शरीक करते हैं, इनके सीने जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं आपका रब सब कुछ जानता है, वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, दुनिया और आखरत में इसी की तारीफ है, इसी के लिए फरमा रवाई है और इसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। वापसी को याद कीजिए, चलिए आयात पर अमल, अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, लोगों को फजूल खर्ची और गरूर से खबरदार करें और बताएं कि ये जवाले नेमत के असबाब में से है। दो चीज़ें लिख लें अपने लिए, फजूल खर्ची और गरूर, बड़ा बनना, कहीं मेरे अंदर तो नहीं है ये, सोचिए ऐसे पैसा तो नहीं फेंकती अपनी जात पे, और ऐसे गरूर के लिए अपने लिए कीमती कपड़े और जूते लेकर दूसरों से अपने आप को बड़ा तो नहीं समझती और फिर हक से दूर हटती हूँ। अगर ऐसा कोई जरासीम दिखे तो फौरन तौबा कीजिए, क्योंकि राई के दाने के बराबर तकबर दिल में हुआ तो जन्नत में दाखला मुहाल होगा। अहम कामों की अदायगी से पहले इस्तखारा करने की आदत अपनाइए, बहुत जहन हल्का हो जाता, कंधे हल्के हो जाते हैं इस्तखारे के बाद, सारे दिन की चीज़ों का इस्तखारा सुबह कर लिया करें, और जो भी अल्लाह आपको तौफीक दे। आयत 51 से तदब्बुर की बातें, अपनी गुफ्तगू को फोहश और दिल आजार बातों से महफूज रखे, दुनियावी नेमतों में खोकर आखरत की नेमतों से गाफिल नहीं होना, सही दलील की तबाह करें और इसी पर अमल करें, गौर व फिक्र, नेकी के जरिए बुराई को दूर करना, बातिल और लहव लाएब की मजलिसों से दूरी इख्तियार करनी है, हिदायत और शरीयत इलाही की ताबेदारी में ही हकीकी अमान है, आखरत पर दुनिया को तरजीह देकर कम अकली का मुजाहरा नहीं करना, यानी बड़ी नासमझी है, बाकी रहने वाली जन्नत को छोड़कर, वहाँ की नेमतों को छोड़कर दुनिया के थोड़े से फायदों पे मर मिटना। आगे देखते हैं 71 से, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल्लैला सरमदन इला यौमिल्कियामा, जरा इसको फील कीजिएगा, नॉर्वे में रहने वालों को ये आयत बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि बस सर्दियों में ना रात ही रात रहती है, फ्यू आवर्स दिन में मलगजिया सी रोशनी होती है, और अब गर्मियों में आगे जाकर सिर्फ 2 घंटे की रात, बाकी सारा दिन, रात 11 से 12 बजे के करीब हमारी मगरिब होती है। नॉर्वे में जब हम नए नए आए थे, और अभी भी पीछे जब चंद साल पहले है ना, 11:30 बजे रोज़ा खुलता था, और फजर पता कितने बजे होती थी, 2 बजे, खजूर खाओ, मगरिब पढ़ो, फिर एक ही खाना जल्दी से खाओ, फिर भाग के जाओ तरावी पढ़ो, तरावी की वापसी पे भाग के आते थे तो बस पानी पी लो, चाय पी लो, तो फजर की अजान हो गई, 22 घंटे के रोजे हमने खुद रखे हुए माशाल्लाह, और पता ही नहीं चलता, यहाँ तो गर्मी होती, वहाँ इतनी नहीं, लेकिन जून जुलाई वाली गर्मी थी, तो इस पे भी शुक्र कीजिए कि आपके रोजे छोटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हो, छोटे हों के बड़े हों, अल्लाह जी हमने हमेशा ही रखना है। बस अपने आप को ना अल्लाह के साथ ऐसे झुका दे, अल्लाह ताला मैं तो करूंगी, जो भी करना है जी करना है, ये मुश्किल है करूंगी, जो करेंगे ना तौफीक मिल जाएगी। और आज सुबह उठ के कहे नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, हाय हाय, तो हाय ही पड़ जाती है, सच्ची बता रही हूँ, हाय पड़ती है। तो आदत बनाइए कभी नेकी के किसी मौके पर नो ना कहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में ये कह के आते हैं हम, पहाड़ों की तरह पढ़ के आ जाते हैं और अमल के मौके पर हमें उजर सोचते हैं। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला तुम पर रात ही रात क़यामत तक बराबर कर दे, तो सिवाय अल्लाह ताला के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए? क्या तुम सुनते नहीं हो? पूछो कि ये भी तो बताओ कि अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन ही दिन रखे, तो भी सिवाय अल्लाह ताला के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको? क्या तुम देख नहीं रहे हो? अंदाज देखिए, पूरी सूरत में क्वेश्चनिंग है, शुरू से लेके पहला रुकू ही जो सूरत नमल का शुरू हुआ था उसमें भी सवाल थे ना, अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा, तो जहाँ भी आपको इस बारे में दिख रहा हो, ये बड़ा प्यारा स्टाइल होता है, लोगों को इन्वॉल्व रखता है। इसने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए कि तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। वह यौम युनादीहिम, और जिस दिन इन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ हैं, और हम हर उम्मत में से गवाह अलग कर लेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो, बस इस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ से है और जो कुछ बुख्तान वो जोड़ते थे सब इनके पास से खो जाएगा। इन्ना क़ारून काना मिन कौमी मूसा, ये है वो किरदार। हामान भी एक वजीर था, एक वजीर खजाना था, एक वजीर सेहत होगा, कोई दूसरा होगा, लेकिन ये सारे फिरौन की टीम या उसकी कैबिनेट के लोग हैं। कारून था तो कौमे मूसा से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा, हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बमुश्किल इसकी कुंजियां उठा सकते थे। किस किस को रश्क आ रहा है जी कारून पे? सवाल करूं आपसे, एक कारून ज्यादा अमीर है क्या? आप कैसे बोला? देखिए, कारून के खजानों की चाबियां ऊंटों पे पड़ी होती थी। अब बिलफर्ज उसको कोई सोने का सेट निकालना है अपनी बेगम के लिए, या उसको कुछ डॉलर्स निकालने हैं कि जाकर मैं जरा कोई गाड़ी ले लूं, तो कितनी चाबियों में से ढूंढेगा? हाय, किस ऊंट पे रखी थी ये चाबी? उस पर भी सारी लगा लगा के देखेगा, अपने घर की चाबी नहीं मुझसे लगती कभी, हमेशा अटकती हूँ। अच्छा, अब वो चाबी गलत लगी सही लगी इतने में हो सकता है वक्त ही चला गया, और आपका मेरा खजाना किधर है? कुछ नहीं करना पड़ता, कार्ड दिखाया, शक्ल दिखाई जाओ, पहले लिखते साइन कराते ये करते पर्चियां काटते। आपको पता है आने वाले दौर में आपका खजाना किधर होना? इधर चिप लगेगी आपके, चूं कर दो, सोते में गिरा के आपके पैसे ले जाएंगे, मियाँ बेचारों की खैर नहीं है। हाय हाय, हम उससे ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उसको दौलत रास नहीं आई। क्या हुआ? एक बार इसकी कौम ने कहा इतराओ मत, ये मसला है, पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना बारे का थीम, इतराना मना है, बड़ा बनना मना है, फ्लॉन्ट करना मना है, शो मारना मना है, बाकी माल कुछ नहीं कहता आपको। अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो कुछ तुझे अल्लाह ने दे रखा है इसमें से आखरत के घर की तलाश भी रख, और अपने दुनियावी हिस्से को ना भूल, जैसे कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया तू भी अच्छा सलूक कर, और मुल्क में फसाद का ख्वाहाना हो, यकीन मान के अल्लाह मुफसिदों को नापसंद रखता है। कारून ने कहा ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना पर दिया गया है। हाईलाइट करें, आज भी लोग यही कहते हैं जी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसलिए डॉक्टर बने हैं। इन्नमाउती तो वाला इल्म, इल्म हासिल किया जी, मियाँ कमाते हैं, फैक्ट्री है, बिजनेस है, यानी खुद पे क्रेडिट रखना अपनी नेमतों का। बंदा मोमिन क्या कहता है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। क्या इसे अब तक ये नहीं मालूम हुआ कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत से बस्ती वालों को गारत कर दिया जो इससे बहुत ज्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे, और गुनाहगारों की बाज़पुरस ऐसे वक्त नहीं की जाती। अब जरा सुनिए इसके शो मारने का अंदाज, दूसरों की लाल टपक जाए, लोग मुझे बड़ा के मॉडलिंग करता हुआ दिखेगा। फ़खरज अला कौमी ही फी ज़ीनतिह, बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनियावी जिंदगी के मतवाले कहने लगे काश के हमें भी किसी तरह वो मिल जाता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। चलिए, उसको देखकर तो जो लोगों ने कहा होगा आज जरा खवातीन की आदत क्या है, जो जोड़ा मैं पहन के जाऊं, वैसा कोई ना पहने। मेरी दोस्तों, मेरी नंदों, मेरी भावजों, ससुरालियों को कानो कान खबर ना हो कि मैंने किस ब्रांड का जोड़ा लिया, कौन सा लिया, और जब मैं शादी में वो जोड़ा पहन के आऊं तो उनकी तो आंखें खुल जाएं और वो कहे हैं ये कहाँ से लिया, किस ब्रांड का लिया, कहाँ से लिया। ये मसला, ये बुरा है। ये जो ब्रांड मेंटेलिटी है ना, इसने लोगों को ये फ्लॉन्ट करने पर डाल दिया। कपड़ा नहीं पूछते, ये जोड़ा दिया है किसी, कहते ये फलां दिया है, उसकी मोहर पहले देखते हैं। इतना क्रेज हो गया। फिल्फर्स, कोई कीमती सूट पहन कर निकला, किसी एक ने नहीं देखा ना मेंशन किया। देखिएगा वापसी में ना सर में दर्द हो रहा होगा, ऐसे ही अजीब सा दिल महसूस होगा। ये दूसरा मसला। तीसरा मसला, जिहाद करके, मियाँ से लड़ाई करके, किताल वाली फीस भी लेला वाली कैफियत बना के महंगा जोड़ा खरीद लिया और छुपाया और कहा कि बस किसी को ना पता चले और ये एक ही हो। जो ही शादी हाल में गए ना, तो आगे एक बूढ़ी सी आंटी मोटी ताजी वही जोड़ा पहने बैठी है। ये क्या हो गया, अस्तग़फ़िरल्लाह। थोड़ा आगे गए ऐसी समझाने के लिए, तो आपके ड्राइवर की बेबी ने भी वही जोड़ा पहना हुआ है क्योंकि उसको किसी ने ले दिया। सच बताइए, खुशी होगी फिर भी पहनेंगे? आपको कैसे पता चले कि मैं अपने लिए पहनती हूँ कि दूसरों के लिए? आपको कैसे पता चले कि तहदीसे नेमत है या दूसरों को जलाना है? इन चीजों से पता चलता है। अगर सिर्फ अपने लिए पहनते तो फिर भी पहनेंगे। अब ये जोड़ा महंगा पहनना बुरी नहीं बात, किसी के पास एक लाखों की गुंजाइश है, और अगर वो हजारों का जोड़ा पहनता है तो बड़ा अजीज है वो बेचारा। किसी के पास 12 चूड़ियां और वो 2 चूड़ियां पहनता है तो वो अजीज है, गरीब है वो बेचारा। वो 2 दिखा रहा है, उसके पास तो 12, उसने एक सेट पहना, उसके पास 10 सेट थे। आप लोगों की सादगी को नहीं मेंशन कर सकते, आप किसी की हैसियत को नहीं कर सकते, इसलिए ना तो लोगों को गिल्ट दें और ना खुद को रखें। जो पहने अपने लिए पहने, सहता पचता रलता मिलता वक्त और हालात के मुताबिक जहाँ जाए वैसा पहन ले। गरीब लोगों में जाए तो कभी जेवर ना पहन के जाए, आर्टिफिशियल पहन के जाए। वो हौका पड़ेंगे, उनको देखेंगे इतने महंगे कपड़े, ये क्या पहन के आए, इतना जेवर पहना है इन्होंने। और अगर अच्छे लोगों में जा रहे हैं तो अच्छा पहन के जाए, वो आपको गरीब समझ के ऐसे ही आपको पीछे ही ना कर दे। तो बहरहाल ये सारी चीजें भी आपका दीन बन जाती हैं अगर आप इसको किसी खास सोच और मकसद के साथ करें। लोगों में से बहुत सारे लोग और स्पेशली यंग बच्चियां इस वक्त दीन से सिर्फ इस सोच की वजह से दूर है कि जी फिर सब कुछ छूट जाता है, और फिर जरा सा वो कुछ कर भी लें तो लोग उनको मेंशन भी करने लगते हैं, इवन दर्स के दौरान मेंशन करने लग जाते हैं। मिसाल है, कल आप अपनी बेटी को ले आए, वो नहीं आना चाहती, उसको नहीं अच्छे लगते दर्स, दर्स वालियाँ नहीं अच्छी लगती। अच्छा खैर, वो आ गई, और यहाँ की बात नहीं करें, किसी दर्स की घर की बात करें, कोई पार्टी है, कोई दर्स है वहाँ, कोई आपका गेट टुगेदर है, मीट एंड ग्रीट है। चलिए आपकी बेटी आपके साथ आ गई, अब वो देख रही है माशाल्लाह सब सिस्टर्स ने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वाह ये इतने अच्छे, ये बाल खोल के बैठी हुई है, वाह। वो जो 100% ग्रज था ना दीन का, वो 10% कम हो जाएगा कि शुक्र है कुछ आंटियां तो हैं। इतने में वहां कोई दर्श देने आया, उसने सबसे अच्छा सूट पहना हुआ है। आप सच बताइए, एक यंग लड़की होने के माइंड से सोचिए उसको क्या लगेगा, शुक्र है उसको सांस आएगा कि चलो कुरान पढ़ने के बाद या दीन सीखने के बाद मेरे कपड़े नहीं छूटेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, वल्लाह की चीज़ें पड़ी होती हैं, आपका दिल नहीं करता उनको इस्तेमाल करने को, छोड़ो पड़ी रहे। एक तो बुढ़ापे में आकर होता है ना, और एक मकसद के साथ। जब आप सफर में होते हैं ना तो आप कहते हैं छोड़ो जो ऊपर है वही पहन लो, घरों में बड़े लाड होते हैं, चीज़ें अपनी जगह पर सजी संवरी हो, लाड से अदा से निकालने पहने, कोई मना नहीं करता आपको। तो बात समझ आ गई है कि जिंदगी में ना पहनना सवाब है और ना पहनना गुनाह। गुनाह खराबी के इतराना, बड़ा बनना, दूसरों के लिए तकलीफ का सबब बनना। इसीलिए फरमाया वकालल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जी इल्म ने समझाने लगे, इल्म वाले, ये फर्ज है इल्म वालों का कि इन बातों पे लोगों को समझाएं। क्या कहा कि अफसोस बेहतर चीज तो वो है जो बतौर सवाब इन्हें मिलेगी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और नेक अमल करें। ये बात इन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सबर करने वाले हों। अब देखिए कारून के साथ क्या हुआ, थोड़ी देर पहले लोगों को जला रहे, और रिवायतों में आता है कि जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तालीम दे रहे होते थे ना, तो ये जान जान के वहां से गुजरता था। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आखिरकार हमने इसे इसके महल समेत ज़मीन में धंसा दिया, और अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद के लिए तैयार ना हुई, ना वो खुद अपने बचाने वालों में से हो सका। और जो लोग कल इसके मर्तबे पर पहुंचने की आरजूमंदियां कर रहे थे, वो आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और तंग भी। अगर अल्लाह ताला हम पर फजल ना करता तो हमें भी धसा देता। क्या देखते नहीं हो कि ना शुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती, ना शुक्रापन यहाँ कौन से भला। नेमते लेनी अल्लाह से और इस्तेमाल उसको शैतान के रास्ते में करना। आखरत का ये भला घर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बड़ाई और फख्र नहीं करते और ना फसाद की चाहत रखते हैं। इसको हाईलाइट कर, ये है। अगर आपसे कुरान की कोई एक आयत पूछे, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, इस्लाम का क्या नजरिया है मनी का, तो लिख लीजिए सूरत कसस की आयत नंबर 83। बेस्ट वे है, मैनेज कीजिए मनी को। इसके साथ मैं अक्सर वो हदीस भी सुनवाती हूँ, लेकिन आप इशारा ले लेना कि एक शख्स था तो कहीं से गुजरा तो उसको आवाज आई कि बादलों में कोई कह रहा है कि फलां के खेत पे जाके बरसो। इर्द गिर्द सब कहत था। उसको जरा से तजस्सुस हुआ कि ये किसकी आवाज़ है। खैर वो बादल चला तो ये भी नीचे नीचे बादल के नीचे चल रहा है। एक खास जगह पे पहुंच के बादल बरसने लग गया। इस चीज को तजस्सुस हुआ कि सारे खेत खुश्क हैं और इस खेत पे बारिश हो रही है, क्यों? देखता हूँ कि इसका मालिक कौन है। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, कुछ देर गुजरी तो मालिक आया। कहा, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। वो वही नाम था जो बादलों में था, इसकी फुलानन, उसके खेत पे बरसो। कहने लगा, तेरा नाम तो मैंने अभी बादलों में सुना है, तेरा काम क्या है, तू क्या करता है? कहा, कुछ भी नहीं, कुछ तो है बात का। कहा, बस इस खेत की जब फसल आती है ना तो मैं उसके तीन हिस्से करता हूँ। एक हिस्से से अपनी बीवी बच्चों की घर की जरूरियात अपने डे टू डे लाइफ के काम चलाता हूँ, दूसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ, तीसरे हिस्से से अगले साल का बीज खरीद कर उसको इन्वेस्ट करता हूँ। कहा, बस तेरी ये बांट अल्लाह को पसंद है, बस इस पे अपने आप को ले लीजिए। 100 रियाल है ना तो उसके तीन हिस्से कर लें, 1,000 रियाल है तो तीन हिस्से कर लें, और अपने बांट को इस्तेमाल करके देख लीजिए, मजा ही मजा। मसला क्या, 100 का 100 अपने ऊपर लग गया, बल्कि 10 रियाल का कर्जा भी चढ़ा लिया, ये भी मना है। सारा उठाकर अल्लाह को दे दें और लोगों को कहें कि हमें भीख दे दो, ये भी मना है। और सारा ही उठा के इन्वेस्ट कर दो और बीवी बच्चों के लिए घर में राशन नहीं ला पा रहे क्योंकि इन्वेस्ट करने का शौक है, बिजनेस का शौक है, ये भी गलत है। मनी मैनेजमेंट इज अ बिग रिलीजन, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से खर्च करने की तौफीक मिले। जो शख्स नेकी लाएगा इसे इससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा, ऐसे बदअमाली करने वालों को इन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान, अब सूरत का एंड है, और इसमें अल्लाह के नबी को एक बहुत प्यारा इशारा है। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने का है। कह दीजिए कि मेरा रब इसे बखूबी जानता है जो हिदायत लाया, और इसे भी जो खुली गुमराही में है। वमा कुंता तरजू, आप अपने ऊपर ले लें। आपको उम्मीद थी कि जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इतनी बातें इसमें आपको मिलेंगी? हम तो सोच रहे थे सवाब गुना सवाब कुछ ऐसी बातें, कितनी लाइफ टाइम स्टोरीज हैं। तो अब इस नाजर से तर्जमा सुनिए, आपको तो कभी ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नासिल फरमाई जाएगी। आप में से भी हो सकता है कोई सिस्टर अचानक ही आ गई और फिर आती चली गई, कई प्लान करते हैं वो नहीं आते, कोई अनप्लान आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, कोई उधर से आ जाता। ये कुरान है ही ऐसी खूबसूरत चीज़, अल्लाह डिसाइड करके रखता है कि किसको ये किधर कहाँ सुनानी, किधर बतानी। लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा। अब आपको हरगिज कुफार का मददगार नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिए कि ये कुफार आपको अल्लाह ताला की आयतों की तबलीग से रोक न दें। इसके बाद कि ये आपकी जानिब उतारी गई तो आप अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से ना हों। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना पुकारना, सिवाय अल्लाह के कोई और माबूद नहीं। हर चीज़ फना होने वाली है मगर इसका चेहरा यानी इसकी ज़ात, और इसी के लिए फरमा रवाई है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सलाह सुवायत 88 पे बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल कुरआन। तदब्बुर और अमल के नुक्ते आयत 71 से, अपनी कामयाबियों को याद करके अल्लाह ताला के साथ आजजी के साथ शुक्र का सजदा करें। फिर अल्लाह ताला से एक दुआ मांगे। आज की दुआओं में से ये दुआ है मसनून दुआ। अल्लाह के नबी सलाम फेरने के बाद भी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हसनी इबादतिक। ए अल्लाह, अपने जिक्र शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिले में मेरी मदद फरमा। क्या पता चला, कोई भी इबादत करे ना तो ये पढ़ा करे, नमाज के बाद के अस्कार उसमें मिलती है। ज़ाहरी ज़ेबो ज़ीनत और गुरूर में मुब्तला लोगों को नसीहत कीजिए कि दुनिया का मालो मता फ़ानी है। कुरान से रहनुमाई, हकीकी सुनना तो दिल का सुनना है और उसको कबूल करना है। कि ऐसा तो नहीं होता कि आप भी बस सुन ही रहे हैं और तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ वाले तो बैठ के सुनते हैं, घरों वालों का मुझे नहीं पता किस हाल में सुन रहे हैं। उम्मीद तो ये है कि बैठ के सुनते हैं। बेहतरीन सुनना सामने मुसहफ रख कर, आयतों के साथ पेंसिल से या उंगली से साथ साथ चलना, ये बेस्ट फायदे देगा आपको इंशाल्लाह। मादा परस्त दुनियादार लोग बहुत जल्द फितनों में मुब्तला हो जाते हैं। बुरे साथी अल्लाह के रास्ते से रोकने का सबब बनते हैं। इनकी सोहबत से बचना, गौर व फिक्र, खुद पसंदी और जुल्म तक ले जाने वाली खुशी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं। इसको लिखिए कि हम अपनी खुशियों में अल्लाह को नाराज़ तो नहीं करते, कि हमारा ये रवैया तो नहीं कि खुशी में नहीं अल्लाह को नाराज़ करना तो फिर कब करना है। एक ही तो खुशी है, इसमें नाराज ना करूं। ये मेरा पहला बेटा इसलिए अल्लाह को ना नाराज करूं तो कब करूं। ये सबसे छोटा, इसमें ना नाराज करूं तो कब करूं। अल्लाह हमें हिदायत दे दे। अपनी जात और माल के धोखे में पड़ जाने वाले का अंजाम हलाकत है। नसीहत का मुकाम नरम खिताब का तकाजा करता है ताकि हसूल नसीहत में मुआविन हो। बार बार हर पारे में ये बात होती है, नरम दमे गुफ्तगु गरम दमे जुस्तजू, रज्म हो के बज पाक दिलो पाक जू। दुनियावी लज्जतों पर सब्र करके आखरत को तरजीह देने वाला फितनों में साबित कदम रहता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम साबित कदम रहें। तो सूरत पूरी हुई कसस, अगली सूरत अनकबूत 44 आते हैं इसमें हमारे सामने। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं, जाले को कहते हैं। सूरत अनकबूत जिसमें मक्का के वो दौर के हालात है जिसमें जुल्म बर्बरियत और तकलीफें थी। बहुत दिल से सुनने वाली सूरत है। फील कीजिएगा प्यारे नबी पर कितनी मुश्किलात गुजरी और आपके सहाबा पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। हरूफ मुकत्तात के बाद, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए, हम इन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि चूमी गोयम मुसलमानम बलर्जम केदानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह। जन्नत का रास्ता मुश्किलात से घिरा हुआ है। खुफतिल जन्नत बिल मकारे, इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा, यकीनन अल्लाह ताला इन्हें भी जांच लेगा जो सच कहते हैं और इन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। ये लोग कैसी बुरी तजवीज़ें कर रहे हैं, जिस अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक काम किए, हम इनके तमाम गुनाहों को इनसे दूर कर देंगे और इन्हें नेक आमाल के बदले बेहतरीन बदले देंगे। हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। ये सूरत उस दौर में थी कि जब जवान बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे लब्बैक कह के मुसलमान हो रहे थे, लेकिन माँ बाप उनको रोकते थे। आज भी ऐसा हो रहा है, यंग बच्चे कुरान पढ़कर सही दीन पे आ रहे हैं और माँ बाप आज भी उसी रिवायती दीन पे हैं। अब जब वो बच्चों पे पाबंदियाँ लगाते, मुख्तलिफ धमकियाँ देते तो बच्चे परेशान हो जाते। इसका जवाब अब इस आयत में आ रहा है। क्या, हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना ना मानिए। तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर उस चीज़ से जो तुम करते थे तुम्हें खबर दूंगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए, इन्हें अपने नेक बंदों में शुमार कर लूंगा। और बस लोग ऐसे भी हैं जो जुबान से तो दावा करते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है तो लोगों की ईज़ा दही को अल्लाह ताला के अजाब की तरह बना लेते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। क्या दुनिया जहान के सीनों में जो कुछ है अल्लाह उसे नहीं जानता। जो लोग ईमान लाए अल्लाह इन्हें भी जाहिर करके रहेगा और मुनाफिकों को भी जाहिर करके रहेगा। कुफार ने ईमानदारों से कहा कि तुम हमारी राख की ताबेदारी करो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। आज भी लोग कहते हैं आई विल टेक केयर, नो वरीज, चलो बेटा तुम करो ये सब काम, मैं पकड़ लूंगी, कल माँ को आगे कर देना। बीवी शौहर को कहती, शौहर बीवी को कहता, तू मेरा नाम दे देना। ना ना, हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने वाले। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा क्यामत के दिन। ये तो महज झूठे हैं। आज दुनिया में बीमार हो जाए ना तो खुद ही सहना पड़ता है। लाखों आपसे मोहब्बत करने वाले हैं पर आपका सर दर्द वो नहीं ले सकते। अलबत्ता ये अपने बोझ झोलेंगे और अपने बोझों के साथ ही और भी बोझ। और जो कुछ इफ्तरा परदाजिया यानी झूठ बांधना ये कर रहे हैं, इन सब के बारे में इनसे बासपुरस की जाएगी। यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा? और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनमें 950 साल यानी 950 ईयर्स तक रहे। फिर तो इन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वो थे ही जालिम। फिर हमने भी इन्हें और कश्ती वालों को निजात दी और इस वाक्य को हमने तमाम जहान वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। यानी पकड़ आ गई इनकी। अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो ऐसे ही होता है। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वह इब्राहिम इस काल अली कौम ही, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इससे डरते रहो। अगर तुम में दानाई है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा पाठ कर रहे हो और झूठी बातें दिल से घड़ लेते हो। सुनो, जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा पूजा पाठ कर रहे हो वो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं। बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ही से रोजियाँ तलब करो और इसी की इबादत करो और इसी की शुक्रगुजारी करो और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। रिस्क का ताल्लुक भी अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होने के साथ है। और अगर तुम झुटलाओ तो तुमसे पहले की उम्मतों ने भी झुटलाया है। रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा ही देना है। अवलम यरौ कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क, क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तिदा किस तरह अल्लाह ने की? फिर अल्लाह इसको दोहराएगा यानी रिपीट करेगा इसी को दोबारा। ये तो अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है। कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह ताला ने इब्तदान पैदाइश की, फिर अल्लाह ताला ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे अजाब करे, जिस पर चाहे रहम करे। तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। ना तो तुम अल्लाह को आजिज़ कर सकते हो ना आसमान में। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वाली है ना मददगार। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों और इसकी मुलाकात को भुलाते हैं वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। तदब्बुर के नुक्ते, अपने वालदैन को कोई हदिया देकर इनके साथ हुस्ने सलूक करें, करेंगे उनकी पसंद की कोई चीज़ दूर है तो क्या करें, अच्छी सी बात कर लें, उनको कोई ई कार्ड भेज दें, कोई छोटा सा गैजेट भेज दें। दीन के रास्ते में तकलीफ़ों में मुब्तला किए गए सहाबा के वाक़यात पढ़िए और उनके लिए दुआ कीजिए। हलाल रिज़्क़ की दुआ और इसके हसूल के लिए जद्दोजहद कीजिए। रहनुमाई, अच्छे कामों में वालदैन की फरमा बरदारी वाजिब है, शिर्क या अल्लाह की नाफरमानी में नहीं। क्योंकि ला तातल्ली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहाँ खालिक की नाफरमानी हो वहाँ मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। दावत इल्लाह के लिए मेहनत और सब्र करने में अम्बिया की पैरवी करनी है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी है क्योंकि मायूसी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। गौर व फिक्र की बातें, इब्तला और आजमाइश का मकसद सच्चे और झूठे ईमान वालों को अलग करना होता है। अल्लाह की फरमाबरदारी को मखलूक की फरमाबरदारी पर मुकद्दम करना यानी फौकिया देना, प्रायोरिटाइज करना, इज्जत में इजाफे का सबब है। गुनाह में ताबे और मतबू यानी जिसकी इतबा की जा रही है और जो इतबा कर रहा है, दोनों का हिस्सा होता है। यानी को पहले गुनाह करे और दूसरा उसको देखकर करे, या दूसरा पहले के साथ, दोनों का गुनाह है। हलाल रोजी बिला मेहनत व मशक्क़त हासिल नहीं होती। अल्लाह हलाल पे दिल जमा दे। अब आगे सुनिए, हज़रत इब्राहिम के लिए कौम ने जो आग जलाई उसका क्या हाल हुआ। फमा कान जवाब कौमी ही इल्ला अन कालू, और इनकी कौम का जवाब सिवाय इसके कुछ ना था कि कहने लगे इसे मार डालो या इसे जला दो। आखिर अल्लाह ने इन्हें आग से बचा लिया। ये अल्लाह की सुन्नत। इसमें ईमानदार लोगों के लिए तो बहुत सी निशानियां हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना पर ठहरा लिया है। तुम सब कयामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत करने लगोगे, और तुम सबका ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। कयामत के दिन की झलकी। फामन लहू लूत। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और कहने लगे, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। आप भी कहें इसको। वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। हर उस चीज से हिजरत कर लीजिए जो अल्लाह की नाराजगी की हो। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसहाक को, याकूब अलैहिस्सलाम अता किए, और हमने नबूवत और किताब इनकी औलाद में ही कर दी, और हमने दुनिया में भी उसे सवाब दिया, और आखिरत में तो वो साले लोगों में से है। और हजरत लूत का भी जिक्र करो, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम बदकारी पर उतर आए हो, जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। यानी बड़ा यूनिक सिन तुमने ढूंढा, तुमने इसका गुनाह ले लिया। जितने भी लोग बाद में करेंगे उनको भी सजा मिलेगी। क्या तुम मर्दों के साथ बदफेली के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी आम मजलिसों में बेहयाइयों का काम करते हो? इसके जवाब में इसकी कौम ने सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा, बस जा, अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह ताला का अजाब ले आ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार इस मुफसिद कौम पर मेरी मदद फरमा। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बिशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे कि इस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं, यकीन यहाँ के रहने वाले गुनाहगार हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें तो लूत अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों ने कहा, यहाँ जो हैं हम इन्हें बखूबी जानते हैं। लूत अलैहिस्सलाम को और इसके खानदान को सिवाय इसकी बीवी के हम बचा लेंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रह जाने वालों में से है। फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा, आप ना खौफ खाइए, ना आज़ुर्दा हों, हम आपको बिमा आपके मुतल्लिकीन के बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के वो अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं इस वजह से कि वो बेहुक्म हो रहे हैं। यानी नाफरमानियाँ अल्लाह के अजाबों को बुलाती हैं। अलबत्ता हमने इस बस्ती को बिल्कुल इबरत की निशानी बना दी इन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो। यानी दुनिया में मस्ती ना करो, क़यामत आने वाली है उसको याद रखो, और ज़मीन में फसाद न करते फिरो। फिर भी उन्होंने इन्हें झुठलाया। आखिरकार इन्हें जलजले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे के बैठे मुर्दा होकर रह गए। और हमने आदियों और समूदियों को भी गारत किया, जिनके पास मकाना तुम्हारे सामने जाहिर है, और शैतान ने इन्हें इनकी बदअमालियाँ आरास्ता कर दिखाई थी और इन्हें राह से रोक दिया था, बावजूद इसके कि आंखों वाले और होशियार थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी, इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले खुले मोजज़े लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया, लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले ना हो सके, क्योंकि कोई अल्लाह से आगे नहीं जा सकता। फिर तो हर एक को हमने इसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया। इनमें से बास पर हमने पत्थरों का मीह बरसाया, और इनमें से बास को जोरदार सख्त आवाज ने दबोच लिया, और इनमें से बास को हमने जमीन में धसा दिया, और इनमें से बास को हमने डबो दिया। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि इन पर जुल्म करे, बल्कि यही लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं। जरा से इस मिसाल पे तवज्जो रखिएगा। अनकबूत नाम इसकी वजह। इनकी मिसाल मकड़ी की है। कैसे? कमसल अनकबूत, कि वो एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। काश वो जान लेते। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं, और वो जबरदस्त और जी हिकमत भी है। हम मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया है। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। अल्लाह अकबर। दलील पे बात पूरी हुई। चलिए तदब्बुर आयत 24 से अमल की बातें। मुसीबतों से निजात दिलाने वाली दुआ हस्बी अल्लाह व नेमल वकील पढ़िए। रिवायात से पता चलता है कि हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने यही कलेमात पढ़े थे, हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील। वाज़ नसीहत और अक्ली दलाल के ज़रिए बुराई से रोकिए, किसी दोस्त के गम या तकलीफ़ को हल्का करने की कोशिश कीजिए, और आप और मैं अपनी दोस्त या किसी साथी को रहनुमाई के पॉइंट्स, जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़ता है, अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत में इससे बेहतर चीज़ अता करता है। जैसे अभी पता चला कि जब हिजरत की तो अल्लाह ने बेटों और पोतों की खुशखबरियाँ दी। अल्लाह से दुआ मांगे, आप भी मांग लीजिए। रब इंसुरनी अलल कौमिल मुफ्सिदीन, अल्लाह मेरे रब इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, यानी जो लोग फसाद फैला रहे हैं तो मेरी मदद फरमा उनके भी खिलाफ। आखिरत को याद रखना और हिसाब से डरते रहना गुनाहों से बचाव का जरिया है। गौर व फिक्र, छोटी और बड़ी तमाम मखलूकात अल्लाह की कुदरत के दायरे में है। दोस्तों की खुशी की खातिर अल्लाह की खुशनूदी को कुर्बान नहीं करना। कुरान की कसरत तिलावत से मामलात में बसीरत हासिल होती है। गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले हैं, अल्लाह के माँ सिवा पे नजरें नहीं रखनी। खूबसूरत पैगाम पे पारा पूरा हुआ। मतरूक सुन्नतों में आज की सुन्नत, कोई अच्छी या बुरी चीज़ देखने पर क्या कहेंगे? हज़रत आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह जब कोई अच्छी बात देखते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततिमुस्सालिहात, तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए जिसकी मेहरबानी से तमाम नेक काम पाए तकमील को पहुँचते हैं। और जब कोई नापसंदीदा बात देखते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ये इब्ने माजा की रिवायत है 3803। आप कहते हैं, आपसे कहा करें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।